हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इस श्लोक में, इन दो श्लोकों में बताया जाएगा कैसे जीवात्मा का पतन भौतिक जगत में होता है, ये किस प्रकार से हमारा जो संसार चक्र है, किस कारण से हमारा संसार चक्र चलता रहता है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया जाएगा, इस श्लोक में और अगले श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सभी साधकों के लिए, तो उसको सुनने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा समझिए, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, जो इंद्रिय के विषय हैं, आँख का है रूप, कान का है शब्द इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय हैं, जब इंद्रियों के सामने उपस्थित होते हैं तो इंद्रिय के द्वारा मन उसको ग्रहण करता है। उसके बाद हम अगर उनका ध्यान करने लगते हैं तो मन में हम ये सोचने लगते हैं इस विषय से मुझे कितना सुख प्राप्त होगा। और जब इस प्रकार का कॉन्टेम्पलेशन यानी कि ध्यान होने लगता है तो फिर हमें उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति से हृदय में काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है उसको भोगने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा। और यदि काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और संतुष्ट होने के पहले भी काम के कारण व्यक्ति सोचता है ये इंद्रिय भोग के विषय मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे इस इंद्रिय तृप्ति से रोक सकता है। तो प्रायः लोग बोलते हैं कि हमें क्रोध क्यों आता है, तो क्रोध का कारण है काम, काम का कारण है उस विषय भोग में आसक्ति, और उस आसक्ति का कारण है विषयों का चिंतन करते रहना। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो इस बारे में श्रील बलदेव विद्या भूषण बताएंगे और फिर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। जरा देखिएगा, बलदेव विद्या भूषण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता है और भगवान के प्रति भगवान की तरफ उनको मोड़ता नहीं है, जैसे कि 61 श्लोक में बताया गया था, युक्त आसीत मत परह। एक प्रज्ञावान व्यक्ति की इंद्रियां संयमित होती हैं और साथ साथ वो इंद्रियां भगवान की तरफ बहती रहती हैं, उसमें सेवा में लगी रहती हैं। तो ये अवश्यम भावी है कि ऐसे व्यक्ति के लिए परेशानियां इकट्ठी हों, और ये इन दो श्लोकों में अच्छे से समझाया जा रहा है। जो योगी या भक्त लगातार इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है और इस प्रकार से सोचता है कि इनसे मुझे सुख प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के ध्यान से उन वस्तुओं में आसक्ति होती है। फिर से ध्यान पूर्वक सुनिए, किस प्रकार के ध्यान से इस वस्तु से मुझे सुख प्राप्त होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये ऐसी भावना आती क्यों है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी भावना इसलिए आती है, दो कारण से आ सकती है, एक कि हमारी पूर्व आसक्ति है विषय भोगों में, और दूसरा किसी विषय वस्तु में आसक्ति ना हो लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति का हम संग करने लगते हैं जो उस वस्तु में आसक्त है, तो फिर हमारी आसक्ति भी उन वस्तुओं में आ जाती है और फिर उनका हमारे जब आंखों के सामने, हमारे इंद्रियों के सामने आती हैं तो फिर हम उनका चिंतन करने लगते हैं ये सोचते हुए कि ये हमको बड़ा सुख देंगे। और जब इस प्रकार की भावना आती है कि ये तो वस्तु बड़ी उपादेय है, ये मुझे सुख देगी, तो एक प्रकार की प्यास जागृत होने लगती है, इसे हम कहते हैं काम। तो इस प्रकार के संग से, इस आसक्ति से व्यक्ति को हृदय में भोगों की आसक्ति, भोगों की प्यास जगने लगती है। और जब इस प्रकार की प्यास को या इस इच्छा को हम पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई हमारे इसमें बाधा पड़ता देता है, तो फिर हमें क्रोध आता है। तो ये चीज है सिस्टम। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर आपको ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा कि देखिए, बहुत सारी वस्तुओं में जिनमें हमारी, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारी आसक्ति नहीं थी, लेकिन उन व्यक्तियों में जिनकी उसमें आसक्ति है, उनका संग करने के कारण हमारी उसमें आसक्ति हो गई। भगवत भक्ति में भी, भगवान के नाम में, भगवत गीता में हमारी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन भक्तों का संग करके जो भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का संग करके, उनके तात्पर्यों को पढ़ के हमारी भगवत गीता भागवतम को पढ़ने में रुचि आ जाती है। तो इस संघ का हम अच्छी तरह से अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं, अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें भी भगवान में आसक्ति हो जाएगी, नहीं तो भगवान के मंदिर में आने मात्र से लोगों की बहुत आसक्ति भगवान में नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं जब वो भक्तों का संग करते हैं, प्रमाणिक भक्तों का संग करते हैं जिनका भगवान में आसक्ति है, तो फिर वो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अपना जीवन भगवान की तरफ समर्पित करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, अब प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तो हमने समझा दिया है कैसे होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस बात की हमने भी चर्चा कर ली है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का मतपर नहीं है, तत्पर नहीं है, भगवत सेवा में नियोजित नहीं है, तो इंद्रियां विषय भोग की तरफ जाएंगी ही, क्योंकि सब जगह सर्वत्र इंद्रियों के विषय भोग उपस्थित हैं। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे उस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, और श्लोक जो पिछले श्लोक क्रमांक 60 में बताया गया, यदवधि में मचेत कृष्ण पदारविंदम वाला, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आसादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। देखिए, साधक होने के नाते हमको बहुत सतर्क होना चाहिए कि अभी भी ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध हो गए हैं और हम श्रीपाद यमुनाचार्य की स्थिति में अभी हम नहीं हैं। हमको ये स्वीकार करना चाहिए, दुनिया के सामने करें या ना करें, लेकिन अपने हृदय में तो इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग वल्नरेबल हैं। मतलब अगर विषय भोग के वातावरण में अपने आप को हम लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारा पतन हो उस अवस्था में। तो इसी कारण से साधकों को प्रयास करना चाहिए, हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे वातावरण से बचें जहाँ पे हमारी इंद्रियाँ उत्तेजित हो जाएं, जहाँ पे हमको इस प्रकार के ध्यान करने के विषय प्राप्त हों। बहुत सतर्क रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी और शिव जी का जो धारण यहाँ पे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि शिव जी भक्त नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है, बल्कि पद्धति जो है उसका तुलना की जा रही है। योग पद्धति के मार्ग से इन स्वयं नहीं कर सकते हैं, इस कारण से शिव जी का उदाहरण दिया जा रहा है, और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति इंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है और उनको भगवान की तरफ मोड़ सकता है, इसलिए हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया जा रहा है। हम लोग क्योंकि आनंदमय हैं इसलिए सुख की तलाश में हम हर क्षण रहते हैं। अगर वो सुख भगवत सेवा के द्वारा भी हमको नहीं मिल रहा है या हमने नहीं लगाया है, तो निश्चित रूप से इंद्रियों को हम भगवान की सेवा निश्चित रूप से इंद्रियों को माया की सेवा में लगाएंगे ही। इसमें शाम जैसी चीज नहीं है, दिन है और रात है। या तो हम अपनी इंद्रियों को एक पर्टिकुलर समय में इस समय कृष्ण की सेवा में लगाए हैं या फिर इस समय माया की सेवा में लगाए हैं। तो इसलिए हमें अपनी स्थिति को समझते हुए कि इस समय हमारी इंद्रियां दूषित हैं, पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो माया की तरफ आकृष्ट होना उनका सहज स्वभाव है, तो इसलिए इंद्रियों को सीमित करके भगवान की सेवा की तरफ मुड़ते रहना आवश्यक है। दूसरा, ये विचार जब हमारे मन में बनने लग जाए किसी भी विषय भोग का, जो पहले किया है या इस समय किया है, कुछ भी है, अगर हम उसका ध्यान करते रहेंगे तो हमारे लिए विषय आसक्ति को त्यागना वो बहुत मुश्किल होगा। तो प्रयास करना चाहिए कि उसको हम ध्यान के स्तर पर ही छोड़ दें। एक महान भक्त के हृदय में भी बुरी इच्छाएं आ सकती हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, लेकिन वो उसको उगने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। सिंपल सा उदाहरण समझिए, जैसे कुछ समय पहले भारतीय एक आर्मी कैंप में कुछ आतंकवादी घुस गए, तो सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि आतंकवादियों को अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वो घुस गए हैं अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उनको पाल पोस के बड़ा किया जाए, उनको ढूंढ ढूंढ करके निकाल के बाहर करने का प्रयास कर मारा जाता है, इसलिए तो उनको मारने का प्रयास किया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो पूर्व संस्कारों की वजह से भौतिक इच्छा हैं, उनको ध्यान करके करके और पोसने की बजाय हमें प्रयास करना चाहिए उन पे कार्य ना करें और अपनी इंद्रियों को लगातार भगवत सेवा की तरफ मोड़ते रहें, ताकि ये इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। मैं इस एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूँ, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक दीपक है और दीपक में तेल है, तो तेल दिन अगर हम बंद कर देंगे तो एक दिन अपने आप ही वो जो लौ है वो बुझ जाएगी, लेकिन अगर हम तेल देते रहेंगे तो वो लौ जो है, जो फ्लेम है, वो जलती रहेगी। तो इसलिए हमको ये जो मेडिटेशन का, कंटेम्पलेशन का, ध्यान का ये जो तेल है, ये बंद करना चाहिए और इस ध्यान को, इस कंटेम्पलेशन को, विचार को, मननशीलता को भगवान की तरफ जोड़ना चाहिए। इसके द्वारा हम लोग मोह से उत्पन्न अज्ञान से बच सकते हैं। एक श्लोक और देखेंगे। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इस बात में श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या बोलेंगे उसको हम देखेंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि क्रोध से सम्यक मोह, मोह का अर्थ है व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में हम देखते हैं ना, लोग कितना लोगों का अहित कर देते हैं, बाद में उसके लिए पछताते रहते हैं, बहुत बार ऐसा वो कुछ पाप कर देते हैं या अपराध कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा जीवन उनको जेल में बिताना पड़ता है, छोटे से एक क्षणिक क्रोध की वजह से। तो क्रोध जो है उसका कारण तो हमने पिछले श्लोक में समझा, अब क्रोध की वजह से क्या होता है वो हम देखेंगे। तो क्रोध की वजह से व्यक्ति ये भूल जाता है कि व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार का सम्मोह उत्पन्न होता है चित्त में, तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति किस चीज की? कि उसने ये इच्छा करी थी कि मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करूंगा, अब ये भावना, ये स्मृति भूल करके वो इंद्रियों को तर्पण करने में, इंद्रियों को सुख देने में बिताने लगता है। इसीलिए एक भक्त बता रहे थे, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह देव से, कि भगवान मेरे यही प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ना हो। तब कहेंगे प्रहलाद महाराज के तो हृदय में भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर ये प्रार्थना क्यों कह रहे हैं? तो भक्त बता रहे थे कि कभी कभी शुरुआत में भौतिक इच्छा नहीं होती है, लेकिन भक्ति करते समय, साधना करते समय बीच में, बाद में भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि शौबारी मुनि के संग हुआ था। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान कभी भी मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ना हो, ऐसा आशीर्वाद मेरे को दें। तो ये सम्मोह जो है, इससे हमारी स्मृति, हम विस्मृति में परिवर्तित हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण नहीं बल्कि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। और जब इस प्रकार की स्मृति हम भूल खो जाती है, तो बुद्धि नाश, बुद्धि का एक फंक्शन है, एक कह सकते हैं कार्य होता है संकल्प। संकल्प से मेरा मतलब है कि डिटर्मिनेशन। संकल्प तो मन का कार्य होता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम निश्चय, हाँ निश्चय शब्द है, निश्चय के करते हैं कि मुझे अपनी इंद्रियों को समित करना है। और ये हम बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करने की बुद्धि जब नाश हो जाती है, तो फिर व्यक्ति पूरी तरह से संसार में, संसार का मतलब होता है भौतिक भोग के चक्र में डूब जाता है। तो जो व्यक्ति अब भगवान की शरणागत नहीं है, भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहा है, भगवान के लिए अपनी इंद्रियों की सेवा में, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा रहा है, उसका मन निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा और विषय भोगों के चिंतन के द्वारा उसका पतन तो अवश्यंभावी है। तो इसलिए अगर कोई अपने मन को जीतना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो उसका उद्देश्य है, उसका तरीका है भगवत सेवा। अद्भुत बात है कि जब हम लोग आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल प्रेजेंट करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों और मन को इस प्रकार से नियंत्रित करूं ताकि मैं और इंद्रिय भोग कर सकूं। ये भी कितनी बड़ी मूर्खता है कि इंद्रियों को, मन को हम संयमित तभी कर सकते हैं जब हम उसे भगवान की सेवा में लगाएं। तात्पर्य देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फलगु अथवा अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। थोड़ा इस बात को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर श्लोक को यहाँ पे उद्धरण किया है, अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो बहुत ही गहरा है। हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां से कौन सी वस्तु है जो हमारे विषय भोग के लिए नहीं है? सभी कुछ तो है, चाहे आप बल्ब लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, वो हमारे विषय, हमारे जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनका तो विषय है ही ना। चाहे जल हो, चाहे कुछ भी, कोई भी भगवान की शक्ति है। जो एक भक्त है उसका सच्चा वैराग्य इसलिए है क्योंकि वो ये देख पाता है कि ये वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान की शक्ति हैं, इनका उपयोग भगवान के लिए होना चाहिए, ना कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो एक इस प्रकार का अभ्यास अगर व्यक्ति को हो जाए, रियली सच्चा अभ्यास हो जाए, उसका हृदय इस प्रकार से शुद्ध हो जाए, तो किसी भी वस्तु को देख के पहला जो विचार मन में आएगा या जो एकमात्र विचार मन में आएगा या आना चाहिए वो ये है कि इस वस्तु का उपयोग मैं या इस व्यक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे कर सकता हूँ। तो ये शुरुआत का जो पॉइंट था कि ध्यायतो विषयान पुंसः, इस विषय का हम ध्यान करते हैं किस भावना से कि मैं इसका भोग कैसे करूँगा, यहीं से बात खत्म हो जाती है। ये जो ओरिजिन है वही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसे इस वस्तु का उपयोग या इस व्यक्ति को मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूँ? तो ये भगवत प्रेम के कारण होता है। जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे ये असली वैराग्य हृदय में जागृत होने लगता है, जिसमें हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना सीख जाते हैं। और जब इस प्रकार से हो जाता है तो वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी व्यक्ति निराशक्त रह सकता है और सच्चे वैराग्य में स्थित रह सकता है। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधा पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना में मृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह कूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मेरे आज जीवन का आज के ही घटना है। आज सुबह एक भक्त ने मुझे अपने घर पर न्योता दिया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया हमको। अब उसके बाद शाम तक, रात तक कुछ भी खाने की कोई इच्छा नहीं रही। यानी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, उससे तो इंद्रिय शुद्ध हुई, साथ साथ इंद्रियों का जो विचलन है, ये खाऊं वो खाऊं, वो भी समाप्त हो जाता है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही भक्ति करते करते जब हम वस्तुओं का उपयोग करना भगवान की सेवा में सीख जाते हैं तो उन वस्तुओं, हृदय इतना तृप्त होने लगता है भगवत सेवा के द्वारा कि व्यक्ति का मन भोगों की तरफ जाता ही नहीं है। या इससे पहले एक और स्टेज आती है जिसमें हम विषयों को देखते हैं और हमारी स्मृति हमको आ जाती है भगवत कृपा से कि इसमें वो सुख नहीं है जो ये प्रॉमिस करता हुआ दिख रहा है। ये वस्तु मुझे वो सुख नहीं दे सकती है जैसा कि मुझे मेरा मन या मेरा माया देवी जो है वो मुझे प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं पूर्व संस्कारों की वजह से। तो एक तो ये है। दूसरा, ऊपर की स्थिति ये है कि उनमें भोग बुद्धि, उपादेय बुद्धि की अच्छा है, सुख देगा, यही खत्म हो जाती। इस प्रकार से व्यक्तियों की इंद्रियां लगातार भगवान की सेवा में लगी रहती। तो मैं एक उदाहरण अपना प्रसादम का दे रहा था कि जब व्यक्ति पूरी तरह से अच्छे प्रसादम से संतुष्ट है, तो सामान्य खाने के प्रति बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग खाली सोचते रहे कि नहीं नहीं हम भूखे रहेंगे, भोग पदार्थ नहीं खाएंगे, तो कब तक? खाना तो पड़ेगा ही। और अगर भूखा रखते हैं या शुष्क पदार्थ खाते हैं तो और भोग की इच्छा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से भक्त जो हैं अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके, भगवत सेवा का सुख प्राप्त करके अपने अपने आत्मा को, अपने मन को संतुष्ट रख सकते हैं सच्ची तरह से। और इसके लिए हमको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नियम का पालन करने से क्या लाभ होते हैं उसकी चर्चा हम आगे के श्लोक में करेंगे, 64 इत्यादि में। हरे कृष्णा।